नमों विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीष्मद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने अतिमत्तचरित्राय स्वासितानांच पालिने जीवदुःखे सदार्ताय नाम प्रेम प्रदान वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् सप्रथम है अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हों विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवती निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपास श्रीमद्भक्ति तैत माधव गोस्वामी महाराज उनके चरणों में भी कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट परम स्नेह और वत्सल भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज जी के चरणों में मैं अपनी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन। तत्पश्चात उपस्थित सभापति महोदय श्री चैतन्य गौड़िया मठ के आचार्य एवं सभापति महाराज और उसके जनरल सेक्रेटरी परम वैष्णव श्री श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के चरण कमलों में भी मैं दंडवती प्रणाम करूँ। तत्पश्चात अनन्यत्र दंडीपादगण उपस्थित वैष्णव वैष्णवीगण आप लोग अपने परम गुरुदेव को तो जानते ही हैं, उनके निकट से रहने और समझने का मुझे भी कुछ अवसर मिला। मैंने देखा है उनके जीवन में तृणादपि सुनीच तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद श्री सुत माधव गोस्वामी महाराज जी को बहुत बार बहुत निकट से भी देखने का सुयोग मिला, उनकी सेवा का भी कुछ कुछ सुयोग मिला। उनको मैंने क्रोधित होते हुए नहीं देखा, उनका शिष्य प्रशिष्य भी यदि क्रोधित हो जाएगा तो कैसे उसके हाथ सिर पर हाथ रखकर बड़े प्रेम से संभालते थे, हमने बहुत अच्छी तरह से देखा। दूसरों को सम्मान कैसे, अपने गुरु भाइयों को सम्मान के साथ साथ में गुरौ गष्ठे गोष्ठाले सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रेशी नामनी ब्रजवदंद शरणे सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतितरामय। ये जो देखा पूज्यपाद ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद माधव गोस्वामी महाराज के चरित्र में, अपने गुरु भाइयों की तो बात क्या, ब्रजवासी लोगों को तीर्थ पुरोहितों को और अपने शिष्य जैसे हम लोगों को भी अपनी व्यास पूजा के समय में किस प्रकार से पूजन करते थे कहीं हमने अन्यत्र नहीं देखा। अपने हाथ से तिलक करते, वस्त्र दान करते और भ्रष्णेय करते। मैं उनके शिष्य के शिष्य होने योग्य नहीं, तभी इतना सम्मान। ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, और यदि इस पर भी नहीं सीखे तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। गुरु भाइयों के लिए वो क्या करते थे, कुछ भी उठा नहीं रखते। हमने दिनारती हरि ब्रह्मचारी जी को देखा, बाबा जी हुए थे, उनके लिए क्या नहीं करते। गुरु भाई जहाँ भी कोई आ जाता उनका परम स्नेह करते। आज उस स्नेह का मैं अभाव कुछ कुछ लक्ष्य करता हूँ। और की तो बात क्या, हमारे नाम वाले महाराज नारायण जी, पूरी जी, कर्पूर जी, ब्रह्मचारी अवस्था में आप तो जानते ही हैं, जे कैसे धुरंधर, जबकि ताव बिगड़ जाएगा तो उनको संभालना बड़ा भारी कठिन। हमने देखा किसी बात के लिए बिगड़ गए चैतन्य मठ वहाँ कलकत्ते में, उनको कोई नहीं संभाल रहा था। महाराज ने उनके सिर पर हाथ रख करके कैसे बच्चे जैसे स्नेह करके उनको बैठाया। दूसरे के मान की बात नहीं थी, यह महाराज जी में ही संभव था। अभी हम यदि हमारा कोई गुरु भाई अभी दीक्षा इत्यादि देने लग जाए ना, तो मैं तो पहले बिगड़ूंगा, कहे नहीं हमारे अतिरिक्त तो दूसरे का नहीं चलेगा। और महाराज जी को देखा, महाराज जी को बात क्या, महाराज जी का शिष्य और उसका शिष्य यदि आए तो महाराज जी ऐसे देखते थे जैसे उनके नाती हो, उनको अपने गले में बैठा। ओ अजमेर वाले कोई ब्रह्मचारी थे पहले, वो शिष्य करने ले, उनका कोई शिष्य आता, हम तो नहीं उठने देते मठ में। और वो क्या करते, ऐसे मालूम उनका पोता का पोता आ गया, बड़े लाड़ प्यार करते। और कहते वो यदि हमारे यहाँ पर आश्रम की स्थापना करना है, विग्रह की प्रतिष्ठा करना है, आपको निमंत्रण करते, मैं तो नहीं जाता। और वो क्या करते, जाते थे। ये दिल दरियाव होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, सबके लिए ये संभव पर नहीं, कलयुग के लोगों के लिए ये संभव नहीं। तो महाराज के गुणों की मैं कितना वर्णन करूं, दूसरों का कैसे सम्मान देते, अपने सम्मान की लालसा नहीं रखते थे। हम लोग का सौभाग्य था जैसे महापुरुषों का हमने दर्शन। पूज्यपाद गिरी महाराज जी का क्या वर्णन करूं, ये लोग सब तो जानते हैं। ये उनका आश्रम था, किंतु अपनी सेवा से संतुष्ट होकर के परम पूज्यपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज को उन्होंने दे दिया सेवा से संतुष्ट होकर। उनकी महिमा का बखान करना बड़ा भारी कठिन है, स्पर्श हम लोग नहीं कर सकते। आप लोग उनको देखा नहीं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, वैष्णव होए तो ऐसा हो, सबको सम्मान देना। हम लोग आज आए हैं यहाँ कुछ हरि कथा कहने के लिए, मैं अधिक नहीं कहना चाहता कुछ। महाराज जी तत्वविद हैं, कोई कोई व्याकरण साहित्य में, व्याकरण में साहित्य में और सब विषयों में तीर्थ होता है, ये हमारे किस चीज में तीर्थ हैं जानते हैं, भक्ति के सिद्धांत में, विचारों में। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, माया तत्व, जीव तत्व और भी जो तत्व हैं, ये सबके तीर्थ हैं। इनकी वाणी आप सुनने से समझ सकते हैं जो कैसे वाणी में ओज है। बड़े उदार हैं, हम लोगों पर बहुत स्नेह रखते हैं, हम लोग बहुत से गलती कर देते हैं, किंतु ये लोग ध्यान में नहीं देते। तो आज इन लोगों से प्रार्थना है कि ये लोग कृपा करेंगे कि हम भी भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकें। इसलिए तत्व इत्यादि का विचार महाराज जी कर बोलेंगे, मैं तत्व इत्यादि कुछ नहीं जानता, एकदम नहीं जानता, यदि कुछ जानता हूँ तो इन लोगों से ही कुछ सीखा होगा शायद। इसलिए थोड़े से मैं संक्षेप में ही बोलना चाहता हूँ, हम लोग वृंदावन में आए। ये वृंदावन है क्या? वृंदावनम सखी भुवो दितनोति कीर्ति जद्देवकी सुतपदम जो लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशानि अवर्तानि समस्त सत्तम। ये वृंदावन वह भूमि है, वृंदा जी की है भूमि, जहाँ पर कृष्ण ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर, केवल कृष्ण नहीं ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर, गोवर्धन की उपत्यकाओं में जब बंसी बजाते तो मयूर थिरक करके नृत्य करने लगते, कोयल कुहू कुहू अपना बंद कर देती, सभी सत्व मृगा से लेकर के और जितने भी मृगियाँ हिरणे और सब कृष्ण के निकट पहुँच करके प्रणय की भिक्षा मांगती अपने नैनों से। यह वह वृंदावन है। मयूर का नृत्य और कृष्ण का बंसी वादन सुन करके समस्त प्राणी एकदम शांत प्रशांत हो जाते। यह वृंदावन में वही है, जयति जयति वृंदारण्य में तन मुरारे प्रियतम अति साधु शांत वैकुंठ वासात, वैकुंठ वास से भी अधिक यह वृंदावन भूमि है। गोविंद की अत्यंत प्यारी है, श्रीमती जी की अत्यंत प्यारी ये भूमि है। वैकुंठ में भी रहना पसंद नहीं होता है। यहाँ पर लक्ष्मी जी झाड़ू देती हैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में अलियों में, यह वृंदावन भूमि धाम है। जतकिन चित्रिण गोलमकी कटमुखम गोष्ठे समस्तं हितत सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रैरेव मुहुर मुहुर निष्टंकितं जांच्या ब्रह्मादेरपि सस्पृहं ततो सर्वं मयायुत। वृंदावन उनकी कण कण, ब्रजवासी ही नहीं केवल, कृष्ण के परिकर ही नहीं, यहाँ के मयूर सूक सारी, यहाँ के हिरण है हिरण कृष्ण सार हिरण, यमुना सभी धन्य है, सभी धन्य है। ये सबकी हम वंदना करते हैं, कृष्ण लीला के उपकरण हैं सेवा के। यहाँ तक कि सर्प बिच्छू कीकट इत्यादि, यहाँ के वृक्ष इत्यादि भी सच्चिदानंदमय और कृष्ण लीला के अनुकूल हैं। कैसे? कभी हमने सुना है उज्जल नीलमणि का एक श्लोक में, कभी राधिका जी को बहुत गंभीर मान हो गया, उस समय रूठ करके कृष्ण से अलग चलने लगी, तो उस समय आगे जब बढ़ी तो एक सर्प खड़ा हो करके और फंस फंस करते हुए उनके तरफ में दौड़ा, और दौड़ते ही ये जोर से भगी और कहाँ पहुँची होंगी आप लोग अनुमान कर सकते हैं, कृष्ण के गोद में जाकर के गिर पड़ी जो कृष्ण चाहते। इसलिए यहाँ के सर्प बिच्छू कीकट इत्यादि सभी मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम, सभी कृष्ण के सच्चिदानंद सेवक हैं, लीला के उपकरण हैं। इसलिए इस वृंदावन भूमि को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। जहाँ पर आप लोग आए हैं ये साधारण नहीं, यहीं पर काली अदा है, यहीं पर रासलीला स्थान है, बंसी बट है, यहाँ पर कृष्ण की सर्वोत्तम रासलीला इत्यादि हुई, वहीं पर गोपेश्वर महादेव जी हैं जिनकी कृपा से वृंदावन में प्रवेश किया जा सकता है। यहीं पर पासी में जहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटी है, वो क्या है? सेवा कुंज है। उस सेवा कुंज में किस लिए सेवा कुंज? इसलिए कि कृष्ण ने उनकी सेवा की थी, और सब जगहों में कृष्ण की सेवा और गोपियाँ करती हैं, और वहाँ पर क्या हुआ जो भागवत का मूल तात्पर्य है। कृष्ण की कहीं वहाँ पर महत्ता नहीं दिखाई श्रीमद् भागवत में, जैसे वंदे ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिक्षणसा जासांग हरि कथोद्गीत पुनात घोनत, कृष्ण की यहाँ पर कहाँ वर्णन किया गया? आशाम हो चरण रेणु शाम, उद्धव जी कृष्ण का वर्णन छोड़कर के गोपियों की चरणों की धूली की वंदना करने लगे, निगम कल्पतर गलितंग फलम, ये किसके लिए कहा गया? गोपियों के लिए कहा गया। कृष्ण नहीं तो निर्विशेष हैं। इस चीज को इस वृंदावन में जैसे तैसे आप लोग पधारे हैं, ये साधारण भूमि नहीं है। ब्रह्मा इत्यादि के लिए भी वंदनीय है, शंकर के लिए वंदनीय है, और सबके लिए ये वंदनीय भूमि है। यहाँ तक कि कृष्ण भी इस भूमि में सेवा कुंज में राधा जी की वंदना करते हैं। ये ऐसे साधारण नहीं, जैसे तैसे व्यक्ति को किसी प्रकार से सुयोग मिला इस धाम में आए हैं, बहुत सौभाग्य की बात। यद्यपि माया के ऊपर में है तो भी यहाँ पर है, कुछ न कुछ धूली तो उड़ेगी ही, इसलिए मुक्ति तक भी दूर हो जाएगी। यहाँ के द्वारकाधीश की उपासना भी छूट जाएगी। यहाँ तक कि और कितना कहूँ, ऐसा सौभाग्य हो सकता है इन महापुरुषों की वाणी से। अभी इन्होंने बताया त्रिवेणी संगम से साधुओं का संगम बहुत फल देने वाला है। त्रिवेणी का संगम चैतन्य महाप्रभु के प्रेम अथवा गोपियों का प्रेम नहीं दे सकते, ये महात्मा लोग दे सकते हैं। ऐसे भूमि में जैसे तैसे आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा और कहूँगा, नहीं तो फिर समय अधिक हो जाएगा। हम लोग यहाँ आए हैं भक्ति का अनुशीलन करने के लिए, भक्ति समझ करके उसमें प्रवेश करने के लिए। इसलिए भक्ति का स्वरूप हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। रूप गोस्वामी ने समस्त जितने भी भक्ति की परिभाषाएं हैं उनको क्रोड़ीभूत करते हुए कहा, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यान अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। इसमें श्रद्धा से लेकर के भक्ति का सबसे जो छोटा सा फ्रैक्शन है, यहाँ से लेकर महाभाव, भक्ति के महाभाव इत्यादि का सबका इसमें क्रोड़ीभूत है, सभी इसमें आ गया है। शुद्धा भक्ति कहने से इसको समझा जाता है, किंतु इसको और जरा अच्छी तरह से गंभीर रूप में समझा जाए। ये साधन और साध्य दोनों इसमें हैं। इसमें साधन भक्ति भी है, भाव भक्ति भी है, और इसमें प्रेमा भक्ति भी है। और प्रेमा भक्ति से भी ऊपर स्नेह मान इत्यादि की जितनी भी अवस्थाएं हैं, महाभाव प्रौढ़ इत्यादि तक, सभी इसके अंदर में हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, भक्ति कहने से, शुद्ध भक्ति कहने से कोई अशुद्ध भक्ति भी क्या है? हाँ है। हम लोग कभी कभी स्वरूप सिद्धा भक्ति को छोड़ करके संग सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति को ही भक्ति मान लेते हैं, और इसी में भक्ति हो जाए, भक्ति होते नहीं, और भक्ति को छोड़ करके अन्य पथ में चले जाते हैं। इसलिए इनको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन नहीं है स्वरूपतः, आरोप जिसमें करते हैं, एक बगीचा बनाया और आरोप किया जिसे दो चार फूल ले आएंगे, ठाकुर जी को चढ़ा देंगे, और यदि नहीं चढ़ा तो, यदि बिजनेस करने लगा तो, इसलिए आरोप कर्मों में भक्ति का आरोप करते हैं, इसके द्वारा भक्ति नहीं होगी। संग सिद्धा केवल गुणों में ही, एक आदमी बहुत बुद्धिमान है, स्त्री इत्यादि संग से दूर है, संसार से परम विरक्त है, ये गुण तो है, किंतु भक्ति नहीं है तो इसका क्या महत्व रहा? भक्ति यदि है तो इसका कोई महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं। इसलिए स्वरूप सिद्धा भक्ति में आना चाहिए। इसके पाँच स्वरूप और पाँच लक्षण बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं? एक ज्ञान भक्ति होती है, एक शुद्ध भक्ति होती है, एक प्रेम भक्ति होती है, एक प्रेम पराभक्ति होती है, और एक प्रेमातुरा भक्ति होती है। अब उदाहरण के साथ में थोड़ा समझेंगे। सनत कुमार इत्यादि, प्रहलाद महाराज, इनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। भीष्म पितामह को ज्ञानी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त माने ये नहीं, ये निर्विशेषवादी, यदि ये लोग वृंदावन में आए, गोकुल में जाएं और यशोदा के लाला को देखें, यशोदा मैया उनका कान पकड़ रही हैं, उनको बांध रही हैं, तो क्या करेंगे? अरे ये परब्रह्म इनको बांध रहे हैं, उनको आश्चर्यमय होगा, आश्चर्य होगा। ऐसे जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनमें ज्ञान कुछ मिला होता है, सर्वत्र भगवान को दर्शन करते हैं और समझते हैं कि भगवान को भूख नहीं, प्यास नहीं, उनको गर्मी नहीं लगती तो पंखा झलाएंगे, भूख नहीं है तो कुछ खिलाएंगे। प्रहलाद महाराज ने नृसिंह जी को क्या खिलाया? वो थक गए थे, हमारे नृसिंह जी जब पैर दबाएंगे ये हो सकता है वो कुछ कर सकेंगे, उनको गर्मी सर्दी लगती है जिसके लिए कुछ करेंगे। इसलिए ज्ञानी भक्त लोग कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इसको समझिए। जानते हैं ये भगवान कृष्ण है किंतु नहीं कर सकते, ऐसा ज्ञानी भक्त हम लोगों को नहीं होना है। दूसरा इसे बढ़ करके हमारे हैं अम्बरीश महाराज। मैं बृहद भागवतामृत का कुछ थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। ये अम्बरीश महाराज क्या करते हैं? मन से कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, मुख से कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, अपनी इंद्रियों से, सब इंद्रियों से सेवा करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में अपने आप झाड़ू देते हैं, बाहर देते हैं, उनकी अपने हाथों से सेवा करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को, सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन, अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा। यद्यपि वो अभी साधक हैं, भाव अवस्था तक पहुँचे थे तो भी शुद्ध भक्त हैं। ये नंदनंदन के रूप में और गोपियों के प्राणनाथ के रूप में ये उनको दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए बद्ध अवस्था होने पर भी, भाव अवस्था में होने पर भी ये सारी इंद्रिय, उनके भगवान को भूख भी लगती है इसलिए भोगा रखते हैं और सब सेवाएँ करते हैं। इनसे भी बढ़ करके कौन है? प्रेमी भक्त हनुमान जी क्या करते हैं? राम को भूख भी लगती है तो देख करके उनके लिए ये सब, उनकी सीता को कोई हरण करके ले जाता है तो क्या करते हैं? लंका पहुंच करके लंका को जला देते हैं। कभी ये हनुमान जी सीता जी के श्रृंगार भवन में पहुंचे और पहुंच करके देख रहे हैं कि मैया लगा रही है सिंदूर। पूछा जी मैया ये क्या कर रही? तो ये सुहाग है बेटा, तुम नहीं समझोगे, ये सुहाग है स्त्रियों के लिए, पति जीवित रहें और अच्छी तरह से, इसलिए सिंदूर पहन गई। ठीक है, जब वो श्रृंगार पहन करके चली गई तो उन्होंने सिंदूर में पूरा तेल डाल दिया और घोल करके सारे एक कर करके और सब जगह में उन्होंने लेप लिया और ले करके रामचंद्र जी के सभा में पहुँचे। सब लोग देख करके हंसने लगे। सीता जी ने कहा जे बेटा तूने क्या किया? रामचंद्र जी पूछा तूने ये क्या? उन्होंने कहा यदि मांग में केवल भरने से ये सब समय सुखी रह सकते हैं, इनका सुहाग बना रहेगा और इनको कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं अपने सारों अंगों में ये लगा रहा हूँ जिससे ये सब समय सुखी रहे। इसलिए इनका प्रेम में जो सेवन है बहुत ऊंचा है इन लोगों की अपेक्षा जो दोनों को बतलाया। ये प्रेमी भक्त हैं किंतु कभी कभी इनको मलाल होता है। मलाल माने क्या? दुख होता है। मैं कभी इनको कोई झूठा कोई चीज़ खिलाऊं ये संभव पर नहीं, गले में इनको कस लूं, उनको आलिंगन में पास में कर लूं ये संभव पर नहीं। इसलिए इनसे श्रेष्ठ कौन है? पांडव लोग हैं। अर्जुन को कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के ब्याह और बन गए क्या? साले और बहन ही बन गए, एक पलंग पर सोते हैं दोनों और दोनों एक थाली में खाते हैं। हनुमान जी की यह संभव है? एक पलंग पर सोना, जूठा खिलाना ये संभव पर नहीं है उनके लिए। किंतु पांडव लोग ऐसा होने पर भी अर्जुन का रथ उन्होंने हाँका, स्वयं परब्रह्म होते हुए भी एक पलक लगते ही सारा विश्व ब्रह्मांड को जो लय करने वाले, प्रलय करने वाले, फिर एक मिनट में बनाने वाले, ऐसे ईश्वरों के भी ईश्वर कौन है? सर्व कारण कारणम, ये कृष्ण है। किंतु रथ चला रहे हैं किसका? अर्जुन का। किस लिए? प्रेम के लिए। इसलिए हनुमान की अपेक्षा भी बहुत लाख गुण इनकी सेवा है, पांडवों की सेवा। किंतु ये भी छटपट आ जाते हैं, यदि विश्व रूप देखा हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, यदि सखा हमने कहा तो भूल हो गई तो आप क्षमा कीजिए। इसलिए इन लोगों से भी श्रेष्ठ कौन है? उद्धव जी हैं। न तथा मे प्रियतमो न आत्मजो निरशंकर न च संकर्षण न श्री एव आत्मा यथा भावान। उद्धव के लिए कारण उद्धव उनके ऐसे प्रिय हैं। पांडवों को कभी ब्रज की कथा नहीं सुनाई, और उद्धव जी को क्या देखा? हमारा मंत्री है, हमारे सखा हैं, हमारे प्रिय हैं, कभी सेनापति भी बन जाते हैं, कभी सलाहकार बन जाते हैं, कभी दासरस से सेवा करते हैं, कभी हम लोग मित्र की भांति रहते हैं। इसलिए इन सब लोगों से भी अधिक प्रिय हैं। उनको कृपा करके भेजा कहाँ? ब्रज में। किस लिए? जिस स्कूल में मैं पढ़ा प्रेम का पाठ, ढाई अक्षर का, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, जहाँ पर मैंने पढ़ा खुद। कृष्ण कहाँ पढ़े? किस स्कूल में प्रेम पढ़े? गोपियों की पाठशाला में पढ़े। इसलिए उस पाठशाला में भेज दूँ, मैं अकेला यहाँ छटपट आ रहा हूँ, हमारा ये दुख कोई नहीं जानता। गोपियाँ तो परस्पर दुख बांट लेती हैं, परस्पर कह करके, मैं कैसे बांटूँ? इसलिए उद्धव जा करके उस पाठशाला में कुछ पढ़ाए तो प्रेम, और पढ़ करके आएगा तो इसे गोपियों की महत्ता के संबंध में मैं बतलाऊँगा जो गोपियों में कैसा प्रेम है जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। न पारे हम निर्बद्ध संजीवन, कोटि कोटि आयु वर्षों की होने पर भी नहीं ऋण चुका सकता, इसलिए इसको भेजूं। गए एडमिशन गोपियों के पाठशाला में, किंतु एडमिशन करने योग्य नहीं ठहरे। प्रतीक्षा करो, अभी देखेंगे तब पाठशाला में भर्ती होंगे। और उस पाठशाला में गए, देखा नंद बाबा का प्रेम, देखा नतमस्तक रह गए, उनसे एक वाणी भी नहीं बोल सके। सांत्वना देने के लिए गए, बोलने के लिए शब्द नहीं। बहुत उद्धव संवाद बहुत लंबा चौड़ा है, महाराज जी के वाणी से हम लोग वंचित हो जाएंगे, इसलिए मैं संक्षेप में ही चल रहा हूँ। उद्धव जी गए, गोपियों की महिमा देखा, पाठशाला में भर्ती नहीं हो सके, लौट आना पड़ा कुछ दिनों में ही, क्योंकि योग्य नहीं थे। थोड़ा सा महिमा उनकी देखा और चरणों में वंदना करने लगे। आशाम हो चरण रेण तुषाम हमसा, गोपियों का महिमा दे करके। साक्षात में कृष्ण यहीं पर हैं, मथुरा में नहीं। मथुरा में तो एक छोटा सा उनका कण है, ये कृष्ण अभी भी इसी ब्रज में गोपियों के सन्निकट यहीं पर हैं। ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन को छोड़ करके कभी भी एक पद नहीं जाते, तो श्रीमती राधिका भी नहीं जाती। ये बहुत से कुछ और तथ्य हैं, समय रहने से मैं कुछ व्यक्त करता। कह उद्धव जी ने वंदना की, क्या वंदना की? गोपियाँ जो ये कृष्ण भगवान हैं, समस्त भगवानों के भी भगवान हैं, अखिल रसामृत सिंधु हैं, किंतु गोपियों के मुट्ठी में ये हैं, जैसा चाहती हैं छाछ भर मट्ठे पर इनको नचाने वाली हैं। उनकी सारी इच्छाओं को यदि पूर्ण करने वाली हैं तो ये श्रीमती राधिका जी हैं। तर ये गोपियाँ और कोई नहीं, राधिका जी की काय भी हो हैं। तरह तरह से कितने भावों को लेकर के कृष्ण की जब जो इच्छा होती है वो पूर्ण कर सकती हैं, ये उन्हीं में केवल संभव है। ये लादनी शक्ति हैं, पराशक्ति हैं। इसलिए उद्धव जी उनकी महिमा देख करके चकरा गए और उनकी वंदना करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी इनकी मैं वंदना, इनकी चरणों की धूलि तो जरा वंदना करूं। जब वंदना करने गए तो वो भी नहीं कर सके, बहुत दूर से उस धूलि को प्रणाम किया उन्होंने। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अभिक्ष्ण स जासांग हरि कथोद गीत पुनाति वर्ण। वंदे हम नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम, एक रेणु को, रेणु एक वचन, और गोपियाँ तो करोड़ों हैं, तो यदि एक धूली होगी तो किसकी धूली होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। एक धूली किसकी होगी? सर्वमुखिया की होगी। उस धूली को दिशा को नमस्कार कर रहे हैं, जैसे कि प्रबोधानंद सरस्वती ने बतलाया है, जस्या कदापि वसनांचल खेलोनोत धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि जोगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमस्त विश्वभानु भूवो दिशेपि, उस दिशा को प्रणाम किया। ऐसी ये गोपियों का प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु केश धारा में, रूप गोस्वामी की धारा में आए हैं। आप चाहें न चाहें वैष्णव की कृपा से हम लोगों का रास्ता सुगम हो जाएगा। ये लोग महापुरुष लोग हैं, इनकी वाणी सुने हमने बहुत समय ले लिया। आप लोगों को इनका महाराज जी का हम भी सुनने के लिए आए थे। आप लोग महाराज जी से तत्व सुनेंगे, तत्व फत्व हमको कुछ नहीं आता है। हमने तो वृंदावन की दो एक बातें कह करके अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। और